मुश्किल अल्फाज की वजाहत। आयत नंबर 149 में है यरुद्दू को रा दाल दाल रद्द करना, और ये आयत 145 में युरिद आपने पढ़ा था, दोनों मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन याद रखें युरिद जो है इसका रूट है रा व दाल, इरादा करना, और ये जो है रद्द करना, उल्टा फिरना, तरदीद भी होता है ना, तो रा दाल दाल। आयत नंबर 151 है, इसमें एक तो है मावा व मावा हुन्ना, दूसरा है मस्वा, ये दो लफ्ज आए हैं यहाँ पे और दोनों के मानी है आबाद होना। दोनों के मानी है आबाद होना, तो मावा जो है ठिकाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका रूट क्या है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, असल में है अलिफ वाव या आवा, पनाह लेना, आबाद करना, और जो है वो इसी से फिर मावा, जहां पे इंसान आबाद हो जाता है। आवा क्या होता है कि किसी को अपने यहां रिहाइश के लिए जगह देना, पनाह देना, जैसे असाबे कहफ ने जो है वो जाकर कहफ ने पनाह ली थी ना, इज अवल फितिया तू इलल कहफ अवा पनाह ली, तो मावा जहां पे जो पनाह हो ठिकाना। दूसरा लफ्ज है मसवा, मसवा इसका रूट है सा वो या, और वो पर आप खड़ी जबर दे दें सवा, इसके मानी होते हैं दफन किया जाना, किसी जगह ठहराना, आबाद करना, और ये जवील अजाद में से है। अब किसी जगह ठहरना, मसलन आप देखें कि जो है वो जहन्नुम जो है वो उनका ठिकाना होगी, तो जहन्नुम में उनको आबाद किया जाएगा, तो और ये लफ्ज जो है मरने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे किसी को दफन करना। अब यहां से अगर किसी को कोई मर जाता है और दफन किया जाता है, तो हम तो ये कह रहे हैं वो चला गया, दफन हो कर दिया उसको, और साथ ही क्या है कि अब वो कहीं और आबाद हो गया, तो एक जगह से मरा है दूसरी जगह वो आबाद हो गया है, तो इस तरह यह जवील अजदाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मौके की मुनासिबत से आप देखेंगे क्या इसके मानी है यहां पे ठिकाने के मानी में। आयत 152 है तहसूनहुम हा सीन सीन हस्सा, किसी को जड़ से उखेड़ देना, अलमुंजद ने मानी बताए हैं किसी को जड़ से उखेड़ देना, और हस्सा शदीदुल कत्ल को भी कहते हैं। हस्सा के मानी क्या है, इस तरह चुन चुन के मारना कि दुश्मन की जड़ कट जाए, इसी से जो है जस्सा जासूसी बैरूनी हालात मालूम करना, और हस्सा जो होता है किसी के अंदरूनी हालात मालूम करना, तो जब किसी के अंदरूनी हालात मालूम होते हैं तो फिर क्या होता है कि ज्यादा बुरी तरह उसके साथ मामला किया जाता है ना, तो तहसूनहुम शद भी आई हुई है, तो कत्ल कर रहे थे, फिर फशिल तुम आ गया, हिम्मत हारने का पहला दर्जा है और इस तकानू दूसरा दर्जा है, वतनाजा तुम नून जे आइन, इसके लफ्जी मानी है किसी को उसकी करारगाह से खींचना, किसी को उसकी करारगाह से खींचना, और जब जो है ये तनाजा उर्दू में भी आप इस्तेमाल करती हैं कि दो जमातों के दरमियान और दो लोगों के दरमियान जो है वो तनाजा हो गया है, तनाजा के मानी है कि इख्तलाफ करना, तो किसी भी बात जो हो रही है ना, एक बंदा अपनी तरफ एक बात को खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ बात को खींच रहा है, तो तनाजा, तो किसी चीज को उसकी करारगाह से खींचना, खींचातानी करना, झगड़े का तूल पकड़ना, بات کا ختم ہی نہ ہونا نا، تو تب بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے. تنازع، اختلاف رائے میں کھینچا تانی. ایک تو کہتے ہیں چیز کو کھینچنا، جیسے روح کو جسم سے جو نکالا جاتا ہے تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اب اس پر نزع کا حال ہے، بس کسی وقت بھی اس کی روح کھینچ لی جائے گی، جیسے آخری وقت ہے. تو تنازع فی الامر، رائے میں کھینچا تانی ہو رہی ہے، ایک بات کہہ رہا ہے ایک دوسری بات کہہ رہا ہے. ثم صرفکم سواد رافا، اس کے معنی ہے رخ موڑ دینا. مثلا آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس اگر گلاس ہے، اس کو میں الٹا کر دوں تو یہ ہے اس کو پھیر دیا. کرسی ہے، اس کو آپ الٹا کر دیں. ٹیبل ہے، اس کو الٹا کر دیں. تو رخ بدل دینا، تو اس وقت یہ استعمال ہوتا ہے. لَيَبْتَلِيَكُمْ بَالَام وَو بَالَام، یا کپڑے کو پرانا کرنا، مصیبت اور آزمائش کے لیے بھی آتا ہے. ابتلا بلونی، تسعدونا، آیت 153 میں ہے. سواد عین دال، اس کے اندر دو باتیں خاص طور پہ پائی جاتی ہیں، نمبر ایک بلندی، دوسرا مشقت. معنی ہے کسی بلند مقام پر مشقت سے چڑھنا. سعود لوگ نام بھی رکھتے ہیں، سعود بلندی اور گھاٹی کو کہتے ہیں، اور اس پر چڑھنے والے دشوار گزار راستے کو بھی. تو بلندی اور گھاٹی، چونکہ وہ ایک تو اونچی ہے اور اونچائی پر مشکل سے چڑھا جاتا ہے نا، تو گھاٹی کو بھی کہتے ہیں، اس پر چڑھنے والے راستے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے اور ہوتا مشکل ہے، چڑھائی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. تلمونا، لام و یا، رسی بٹنا، ہاتھ موڑنا. لوا یدہ، اس نے اپنے ہاتھ کو موڑا. لوا راسہ، اس نے اپنے سر کو موڑا. اور اگر اللواء آپ نے پڑھا تھا تو جھنڈا، اللواء جھنڈا. تو تلونا، پلٹنا، مڑ کر دیکھنا، مڑنا دیکھنا، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. غمن بغمن، غین میم میم، لفظی معنی ہے کسی کو چھپانا، کسی چیز کو چھپانا، ڈھانک لینا. تو غمہ تاریکی اور غبار کو کہتے ہیں، غمام بادل کو بھی کہتے ہیں. تو بادل کیا کرتے ہیں، سورج کے اوپر تہ در تہ ہو کر جب گاڑے ہوتے ہیں نا، تو سورج کی روشنی کو نیچے نہیں آنے دیتے ہیں، الغمام. اسی طرح غمۃ الامر، ایسا معاملہ جو بڑا ہی گاڑا ہو جائے، مبہم ہو جائے، گنجلک ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے، اس کے وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور ویسے غم کو بھی کہتے ہیں اردو میں، آپ کہتے ہیں نا غم بہت ہے اس پر، تو اس کے دل کی کیفیت ایسی ہے، وہ کوئی مصیبت کی وجہ سے کہ دل پر وہ چھائی ہوئی ہے، اب اس امید کی کوئی کرن اس کے پاس نہیں ہے، یا کسی طرح بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. فاتکم، فوت سے ہے. آیت نمبر 154 ہے. نعاسن، نون عین سین، غنودگی. نیند کی وجہ سے حواس سست پڑ جائیں، آنکھوں پر اس کا اثر ہونے لگے، یہ نیند کی ابتدائی کیفیت ہے. یغشا، غشی سے ہے. الغاشیہ، قیامت کا نام بھی ہے نا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں چھا جانا. تو قیامت چھا جائے گی، جب کسی پر بے ہوشی چھا جاتی ہے تو عقل اس کی ہٹ جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. احمد، ہما، ہا میم میم. ہا میم میم کے معنی ہے دل میں کسی، جو ارادہ دل میں ہے نا اس پر سوچ وچار کرنا. ارادہ کے معنی ہے دل میں کسی بات کا خیال آنا جانا، اور ہما اس خیال پر سوچ وچار کرنا کہ اس پر کیسے عمل کیا جائے. ہما الجاہلیتی، جیم حالام، نادانی کے لیے بھی آتا ہے، غفلت، نادانی. لبرزا، بارازے، معنی ہے نکل کر کھلے میدان میں آنا، سامنے آنا، گمنامی کے بعد ظاہر ہونا. برز جو ہے نا، بارازے، فضا اور کھلے میدان کو بھی کہتے ہیں. دعوت مبارزت، اردو میں سنا کبھی آپ نے دعوت مبارزت، کسی آدمی کو مقابلے کے لیے للکارنا، میدان جنگ میں کسی شخص کا آگے بڑھ کر دشمن کو مقابلے کے لیے وہ دعوت دے. مداجعہم، دعا جیم عین، پہلو یا کروٹ کے بل لیٹنا، آرام کرنا، خانین یا اونگ آئے یا نہ آئے، اور مداجے بچھونے بستر کے لیے آتا ہے. تو کل بات کا حاصل کیا ہے؟ آرام کرنے سستانے کے لیے پہلو کے بل لیٹنا، خانین آئے یا نہ آئے. بلے یو مہسا میم ہا سواد مہسا زہبا بن نار، سونے کو کھوٹ سے پاک کرنا، کسی کو کسی چیز کو میل کچیل سے پاک کرنا. آیت نمبر 155 ہے. یوم التقا لام کافیا لکیہ سے ہے، اور یہاں پہ التقان دو کے لیے آیا ہے، نون تسنیہ کا گر چکا ہے. الجمعان دو جماعتیں، مسلمان اور کافر جب اکٹھے ہوئے تھے. استزلہم زے لام لام، اور اس کے معنی ہے ڈگمگا جانا. جیسے ذلت ہونا نا شکست کے لیے بھی آتا ہے، تو زے لام لام ذلیل رسوا ہونا، شکست کھا جانا. ان اللہ غفور حلیم ہا لام میم، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. غم اور غصے کے موقع پر طبیعت کا اعتدال میں رہنا، کسی کو سزا ملنی چاہیے، وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن اس کو سزا دینے میں تاخیر کرنا، اسے مہلت دینا. تو پہلا درجہ حلم ہے، دوسرا صبر ہے، تیسرا قزم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 156 غزن غین زے و، لفظی معنی ہے نکلنا، دشمن سے جنگ کرنے کے ارادے سے نکلنا. غزہ روانہ کرنا، تیار کرنا لڑائی کے لیے. غزن غازی کی جمع ہے، واحد غازی جمع ہے غزن. حسرتن ہا سین را، حسرتن اس کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو ننگا کرنا، اور اس سے پردہ اٹھانا. اب آپ دیکھیے کہ ناقۃن حسیرن، ناقۃن حسیرن ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں تھکی بھی ہو کمزور ہو. اس کی جمع ہے حسرا. اب دیکھیں کہ اب اونٹنی ہے، تھکی بھی ہے، کمزور ہے، معنی کیا ہے کہ جب انسان یا کوئی جانور عاجز ہو جاتا ہے، درماندہ ہو جاتا ہے، تو اس کا پردہ اٹھ جاتا ہے نا. جیسے کہ جو بہت ہی جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو جیسے ننگا وہ ہو گیا کہ کرنا چاہ رہا ہے کچھ اور اسے ہو نہیں رہا. تو عاجز اور درماندگی کے لیے بھی حاسد لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کہ ایسا تصور کہ درماندگی نے اس کے قوا کو ننگا کر دیا، درماندگی، عاجزی، لاچارگی، تو جو اس کے اعضاء ہیں اس کو ننگا کر دیا. قرآن میں یہ لفظ آتا ہے ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. کون سی سورت ہے؟ سورۃ ملک. شاباش، کیونکہ سورۃ ملک میں ہے کہ تم آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ تو تمہاری نظر جو ہے وہ واپس لوٹ آئے گی، ناکام ہو کر اور تھک کر، نا مراد ہو کر. تو حسرت جو ہے پھر ایسے غم کو کہتے ہیں कि जो चीज हाथ से निकल जाए इस पर पशेमानी हो, नदामत हो, क्योंकि वो उससे दूर हो गई। गम की वजह से इसके कवा नंगे हो गए, दरमांदगी ने उसको आकर ले लिया। या हसरता अला मा फर्रतु मिन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। अफसोस इस गुनाहों पर जो मैंने अल्लाह के हक में किए, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मैंने किए। या हसरतन अल इबाद, बंदों पर अफसोस है। तो ये लफ्ज जो है ये पछताने, अफसोस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और उर्दू में भी अगर आप देखें तो आप कसरत से इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। और हसेरा कहते हैं अशद्दुन नदामत, अशद्दुन नदामत, नदामत की शिद्दत का होना, यह है हसरत। क्योंकि नदामत के लिए नदामा है कि कोई काम कर लिया तो उस पर नदामत हो, ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा है हसेरा, और तीसरा दर्जा है सुखी तफी यदे। ये पछताने के लिए तीन लफ्ज हैं जो कि कुरान में आए हैं। तो हसरत का लफ्ज जब इस्तेमाल किया जाएगा तो अपने किसी किए हुए फेल पर अफसोस और नदामत के इजहार का नाम है, इंतहाई नदामत का होना, इंतहाई शर्मिंदगी का होना। क्योंकि जब किसी का अगर जिस्म नंगा हो जाए या उससे पर्दा हटा दिया जाए तो उस वक्त भी इंसान बहुत शर्मिंदा होता है ना। अब जो करना चाह रहे हैं इंसान से नहीं हुआ, वक्त गुजर गया है, तो उस वक्त भी क्या है कि एक शर्मिंदगी है, एक हसरत है। उस तरह ये लफ्ज जो है वो अरबी जबान में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे रिजेमलेंस करना जरूरी है कि लफ्जी मानी तो है किसी चीज को नंगा करना और उससे पर्दा उठाना, और वैसे हसरत, इंतहाई नदामत, अशद्द नदामत के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सोचें कि अगर किसी से पर्दा हटा दिया जाए, वो नंगा हो जाए, तो कितनी उसको शर्मिंदगी होगी। तो इसी तरह जो काम वो करना चाह रहा है उससे वो काम नहीं हुआ, वक्त गुजर गया है, ट्रेन मिस हो गई है, फ्लाइट उसकी मिस हो गई है, दूध उबल गया है, खाना जल गया है, जिंदगी गुजर गई है, जवानी गुजर गई, कुछ भी नहीं किया, तो क्या है, अशद्द नदामा। तो अरबी जबान में थकी हुई कमजोर ऊंटनी को भी कहते हैं, कमजोर हो चुकी है, वो थक चुकी है, तो उसका अभी मंजिल थी उस तक वो पहुंची नहीं है। तो इसी तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयत नंबर 158 है, तो शरून, पहले भी आप पढ़ चुकी हैं, हशरा जमा करना के लिए आता है, सिर्फ जानदारों के लिए जमा, जानदारों के जमा करने के लिए आता है हशरा। लोगों को उनके ठिकाने से किसी एक तरफ ले जाना, कि लोगों का जो ठिकाना था ना उससे उन्हें किसी एक तरफ ले जाना। इसमें आप याद रखिए और नोट कर लें कि इस लफ्ज के अंदर तीन मानी पाए जाते हैं, एक तजम्मो जमा करना, नंबर दो सूख हांकना, नंबर तीन वासा बेसत से उठाना, वासा उठाना। कभी एक मानी मुराद होते हैं इस लफ्ज के, कभी दो मानी, कभी तीनों मानी मुराद होते हैं। कुरान मजीद में ये लफ्ज बड़ी कसरत से आया है, तो कभी एक मानी, कभी दो, और कभी जो है वो तीनों मानी इसमें पाए जाते हैं। तो शरून, लिंता, लाम या नून, नरम होना, किसी चीज का लचकदार होना। पीछे आपने पढ़ा था ना कौल लयिन, नरम कौल, नरम बात, इसका ऑपोजिट है गलीज, सख्त के लिए आता है। और ये लफ्ज जो है मादी और मानवी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। फजवन, फा जोए जोए, ये इसका रूट है, फा जोए जोए, ये नया लफ्ज है। इसके मानी है जैसे ऊंट की ओजड़ी होती है ना, जिसमें जो है पानी होता है, और पानी बड़ा गंदा होता है क्योंकि ओजड़ी के अंदर भी तो पानी होता है ना, लिक्विड होता है। आपने कभी देखा है वो ओजड़ी को, कि जब उसको खोला जाए तो उसके अंदर जो गार्बेज और कचरा होता है। बाद लोग ओजड़ी बड़े शौक से खाते हैं, साफ सुथरा करके उसको, हलाल है वैसे, लेकिन जो उसके अंदर चीज है वो जो है वो सही नहीं है, गलाजत है, गंदगी है, तो उसको जो है वो निकाला जाता है। पेट की बीमारियों के लिए बाद लोग कहते हैं कि ये जो है वो बड़ी अच्छी होती है, ये ओजड़ी है। और अरबों का क्या रिवाज था कि जैसे जो उनका ऊंट है वो सहरा के सफर का जहाज है, खुश्की के सफर का जहाज है। और आपको पता है कि ऊंट एक दफा जब पानी पी लेता है तो कितने दिन बगैर पानी पिए वो रह सकता है, पता है आपको कितने दिन रह सकता है?
महीना
महीना भर, तकरीबन महीना भर, कोई कहते हैं 22 दिन, कोई इसके ऊपर नीचे, तो काफी दिन। और वो अपने जो टैंकी है, वाटर की टैंकी, उसमें वो बहुत सा पानी डाल लेता है। और अरबों के यहाँ फिर ऐसा वक्त भी आता है कभी कि पानी खत्म हो गया, सहराई जिंदगी है, अब उसमें वो ऊंट को जिबा करते हैं। ऊंट को जिबा किया, और जिबा करने के बाद उसकी जो ओजड़ी के अंदर पानी होता है ना, उसका वो पीते हैं। तो फा जोए जोए, जंगलों में ओज का पानी निचोड़ना पीना, क्योंकि जब वो सफर करते थे अहले अरब, तो ऊंट को पहले सैराब कर लेते, खूब पानी पिलाते पेट भर कर, अब फिर उसका मुंह बांध देते ताकि वो जुगाली भी ना कर सके और जो है वो हजम ना हो जो कुछ उसने खाया पिया हुआ ना, और सफर में फिर उसको साथ लेके चलते। और अब आप देखें कि वो पानी पीना जो है कितना मुश्किल है ना, कितना बर्दाश्त नहीं है कि इंसान तसव्वुर करे कि अब मैं ये जो ओजड़ी का पानी है उसको, गंदगी का पानी, उसको निकाल कर मैं पीऊं। लेकिन जब मरने लगता है कोई, अब पानी नहीं है, सहरा की जिंदगी है, मौत के दहाने पे वो खड़ा है, उसको पानी, उसको खाने पीने का कुछ भी चाहिए, तो उस वक्त वो उसका इस्तेमाल करते थे। इस तस्वुर को आप जहन में रखते हुए आप याद रखें कि फा जोए जोए, बद मिजाज होना, बद खुल्क होना, सख्त कलाम होना, जबान का कड़वा होना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जिस तरह से वो पानी पीना बड़ा सख्त है, बड़ा भारी है, तसव्वुर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह से किसी की जो जबान है ना, उसकी जो गुफ्तगू है वो उस तरह की हो, इससे आप इसको याद कर लें। और वन गलीज, गैन लाम जोए, गिल्ड, इसके मानी है मोटा, गाढ़ा, सख्त होना, खुरदरा, मोटाई, नाहमवारी। अब ये मोटापन जो है ना, ये जमीन का मोटापन भी हो सकता है कि जमीन बड़ी सख्त है, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दिल के लिए भी किया जाता है, जैसे बाद लोग कहते हैं कि गलीजुल कल्ब, उसका दिल बड़ा सख्त है। मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, गलजुल रजुल, जब किसी को कहा जाए ना गलजुल रजुल, उसका मतलब है मर्द की जो गुफ्तगू है बड़ी सख्त है। अगर औरत के लिए कहा जाए तो उसकी उसकी बातचीत बड़ी सख्त है, मोटी है, सख्त कलामी के लिए। गिल्जत, संग दिली और तुंग खुई के मजमुए को कहते हैं, कि कोई बड़ा सख्त दिल हो, बेरहम हो, और उसके साथ जो उसकी गुफ्तगू है ना बड़ी सख्त हो, खुरदरी हो। तो इसका इस्तेमाल मादी भी होता है, मानवी भी होता है। अब आप देखें, मादी के लिए जमीन सख्त है, ना हमार है, जमीन नजर आने वाली है, मादा है ना इंसान, उसके लिए भी किया जाता है, लेकिन इंसान के लिए जब किया जाता है जब उसका कलाम सख्त होता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लन फद्दू फा द्वाद द्वाद लफ्जी मानी है तोड़ कर टुकड़े टुकड़े करना, किसी चीज को इस तरह जो है वो अलग अलग कर देना, तोड़ कर ऐसे अलग अलग करना जैसे शीशा। आपने शीशा टूटा देखा कभी? किरची किरची करके अलग हो जाता है। और जैसे दीवार भी तो टूटी हुई होती है ना, दीवार कैसी होती है कि बीच में जो है वो एक दरार आ गई है, तो दरार है जब, लेकिन दीवार जो है वो नजर आ रही है, लेकिन आप उसको टूटी भी कह रही है। अच्छा वो गिर भी गई है पर किरची किरची नहीं हुई, पूरी की पूरी एक तरफ को ढह गई है, तो उस वक्त नफ्स ये नहीं बोला जाता। और एक मजे की बात बताऊं, चांदी को भी यही कहते हैं फिद्दा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चांदी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, हम तो उसको बड़ा कीमती समझते हैं, और अब सोने पे चांदी को चढ़ाना शुरू कर दिया है ना, तो अब दूसरी तरफ जो है तोड़ कर टुकड़े टुकड़े करना उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो असल इसके मानी ये हैं कि फिद्दा तो चांदी को कहते हैं वो जमीन जहां पत्थर एक दूसरे के ऊपर बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि ये चांदी सोना ये चट्टानों से पहाड़ों से जमीन से मुख्तलिफ जगह से जब मिलता है तो चांदी क्या होती है कि चांदी के जो पत्थर होते हैं जो उसके जो रेजे या रेशे होते हैं, जो चांदी है उसके जो अज्जा होते हैं वो अंदर या बाहर जहां भी है वो एक दूसरे के ऊपर बिखरे हुए होते हैं। इसी तरह चांदी जो है उसकी मुलम्मा कारी की जाती है, उसको चढ़ाया जाता है, और एक सहाबिया का नाम भी फिद्दा था चांदी। तो किसी चीज के पूरे अज्जा का आहिस्ता आहिस्ता मुतफरिक होना, रागंदा हो जाना और फिर टूटकर अलग हो जाना, जैसे कि शीशा। शाविर हूं शीन मोरा शहद के छत्ते से शहद निकालना निचोड़ना। अब आप देखेंगे शहद के छत्ते के अंदर तो बहुत कुछ होता है ना, तो असल उसमें से निकाल लेना। इसी तरह किसी मामले के मुतालिक चंद आदमियों का मिलकर इसके मुख्तलिफ पहलुओं को सामने रखकर गौर करना और एक दूसरे की राय लेना। अब जब बहुत से लोग मिलकर एक बात पर गौर कर रहे होते हैं, किसी मामले के मुतल्लिक जो है उसके मुख्तलिफ पहलू उनके जेरे गौर होते हैं, डिफरेंट तरह की लोगों की राय होती है, कोई खाम होती है कोई अच्छी होती है, कोई बड़ी पते की बात करता है फौरन टू द पॉइंट पहुंच जाता है, कोई नहीं पहुंचा होता। तो उसमें क्या होता है, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन फिर मशवरा जब आप करते हैं तो क्या करते हैं कि किसी मामले के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते हुए फिर आप एक दूसरे की राय ले लेते हैं, तो असल चीज को निचोड़ कर बाहर निकाल लेते हैं, जो उस मामले के बारे में बेहतरीन फैसला होता है उसको आप निचोड़ कर बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे शाविर ऑर्डर का सीगा है। अजमता ऐन ज़मीम इरादा करना, कुरान में इसके लिए सात लफ्ज आए हैं। अजम का तीसरा दर्जा है, पहला है इरादा करना कोई बात या फिक्र जहन में आए, दूसरा है हम्मा हिम्मत उस पर सोच विचार करना, अब गौर कर रहे हैं कि इसमें अमल किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आप गौर कर रहे हैं, तभी तो आप कहती हैं हिम्मत करो, उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है ना, तो हिम्मत करो। अब अज़्म जो है ये तीसरा दर्जा है कि सोच विचार के बाद पुख्ता इरादा कर लिया है, विल पावर डिसीजन अब ले लिया है अज़्म। आयत नंबर 160 है, लफ्ज यख़्ज़ुलकुम खा ज़ाल लाम आप पढ़ चुकी हैं, धोखा देना, और कौन सा धोखा, किसी दोस्त का वक्त पढ़ने पर धोखा देना। एक तो है ना किसी को आगाज में कोई धोखा दे, शुरू तक क्या है कि शुरू में तो बड़ा अच्छा कोई बना हुआ था लेकिन जब वक्त आया ना ऐन वक्त पर उसको धोखा दे दिया। ये आपने शैतान के बारे में पढ़ा था, मकान शैतान लिल इंसानी खजूला, ये खजूल ऐसा दोस्त जो जबानी दोस्ती का दम भरता हो लेकिन वक्त पड़ने पर साथ छोड़ जाए। दोस्त के लिए भी आता है, खज़ल का लफ्ज दोस्त के लिए भी आता है, किसी की मदद ना करना और वक्त पड़ने पर उसका साथ छोड़ देना। और यहां पर जो है यखज़ुलकुम, ये वर्ब है कि जो है वो तुम्हें छोड़ दे, वक्त पड़ने पर वो तुम्हें धोखा दे दे। आयत नंबर 161 है, अय्याहुल्ला गैन लाम लाम वुल, हर उस चीज को कहते हैं जिससे किसी के अज़ा को जकड़ कर इसके वस्त में बांध दिया जाता हो। मसलन हथकड़ी, बेड़िया, वाहिद है गुल, जमा है अगलाल, गुलूल, बेड़ियों हथकंडियों हथकड़ियों को, बेड़ियों को, तौक को कहते हैं। अब गल्ला के मानी होते हैं हथकड़ी या तौक डालना, ये मादी और मानवी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मादी तौर पर तो क्या है कि हथकड़ी है, बेड़ी है, नजर आ रही है ना, तौक है, किसी के ऊपर डाल दिए गए जंजीरें हैं जिसमें उसको पकड़ कर बांध दिया गया है, हाथों को भी बांध दिया जाए। तो अब बाज़ूकात क्या होता है कि ये जो गल है ना, कि दिल के अंदर गल होता है, दिल में कीना है, कदूरत है, हसद है, हसद की बेड़ी है, हसद की जंजीर है। अब इसी तरह कोई गुरूर किब्र में मुब्तला है, उसकी जंजीर है, तो उसकी वजह से इंसान के फिर दूसरे से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। आयत नंबर 162 है, लफ्ज़ है सीन खा तोए, मानी है नाराजगी के। नाराजगी असल में ये सख्त गुस्से को कहते हैं, इस सख्त गुस्से को कहते हैं कि जिसकी वजह से फिर सजा दी जाए। और अगर आप देखें तो कुरान में नाराजगी के लिए तीन लफ्ज आए हैं, एक तो सीन खा तोए का, ये पहला दर्जा है नापसंदीदगी, जैसे रिजवान या रजा होता है ना, ये इसका ऑपोजिट है। रिजवान रजामंदी है और सखता के मानी है मर्जी के खिलाफ काम पर ना खुश होना, खफा होना, फिर गुस्सा जब आए तो उसको जैसे सजा दी जाए। तो ऐसा गुस्सा कि दूसरे ने जो कुछ किया है ना उस पर फिर उसको जैसे सजा देना चाहे, गुस्से से भर जाना। अल्लाह की तरफ अगर इसकी निस्बत हो ना कि अल्लाह को बड़ा गुस्सा आया, फिर अल्लाह जो है किसी पर अजाब नाजिल कर दे। और दूसरा दर्जा है दिगन का, दाद गैन नून के, है तो नाराजगी पर दिल में छुपाई हुई है, दिगन। तीसरा है गिल, जो अभी पढ़ा है आपने, ऊपर पढ़ा है ना गिल, तो कीने की शिद्दत, पोशीदा दुश्मनी, चोरी, खयानत, कीना, खोट, जंजीरें, हथकड़ी, टॉक, सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गिल ऐसी नाराजगी जो दुश्मनी की हद तक पहुंच जाए और दिल में छुपाई जाए। अब इसी तरह अगर कोई जो है वो खयानत करता है, तो खयानत क्या करता है, छुप कर चोरी करता है ना, पास चीज उसके रख दी, उसने छुप कर चोरी कर दी क्योंकि उसके अंदर गिल पाई जाती थी। आयत नंबर 163 में दराजातुन, दरज और दरक, दाल राजी दाल राकाफ, ये सीढ़ी के डंडे अड्डों को कहा जाता है। अब सीढ़ी के डंडे ऊपर चढ़े जाएं तो दरज है, इसकी जमा दरजात है, और जब ऊपर से नीचे उतरें तो यही डंडे जो है ना ये दरक है, दाल रा कैफ, नीचे उतरना, तो जहन्नुम जो है ना उसके लिए दरकात आते हैं कि उसमें नीचे नीचे जाएगा इंसान, और जन्नत के बुलंदियों पे जाने के लिए दरज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एक हरफ का फर्क है, आप देखें कि मानी में किस तरह से फर्क आ गया। इसे मिलता जुलता लफ्ज आपने पढ़ा था, जस्सा हस्सा, एक और पढ़ा था जनाफा हनाफा। शाबाश। आयत नंबर 165 में अस्वाबतकुम मुसीबतुन असबतुम, इन सब का एक ही रूट है, स्वाद वाओ बा। और ये लफ्ज आयत 166 में भी आया, वमा अस्वाबकुम स्वाद वाओ बा, तीर का निशाने पर लगना, पहुंचना, मुसीबत के लिए मखसूस हो गया। अविद फाउ दाल फा एन, दफा करना, दूर करना, हटाना। आयत नंबर 167 है, बिअफवाहिहिम फा वो हा, मुंह के लिए आता है, और अफवाह हाँ जबानों से मुंह से निकली हुई बात। आयत नंबर 168 है, फदराऊ दाल रा हमजा, हटाना, किसी शख्स को पूरी कुव्वत से दूर करके किसी तकलीफ से बचाना, हटाना। अगर कोई मुसीबत तकलीफ आई है तो उसको पूरी कुव्वत से अपने से दूर करना। फदराऊ हटाने के लिए कुरान में 7 लफ्ज आए हैं, इसका चौथा दर्जा है। आप जैसे कुत्ता अगर कहीं नजर आए तो आप क्या कहते हैं, दुर दुर दर दर, कभी सुना ये लफ्ज ऐसे बाद लोग बोलते हैं उसको हटाने के लिए। अल्लज़ी नस्तजाबू जीम वो बा जॉब, इसके मानी है काटना, सुराख या शगाफ करना, और ऊपर से उसे छील छाल कर दुरुस्त करना। आपको अगर याद हो, वजाब उस सखर बिल वाद, उन्होंने चट्टानों को तराश तराश कर फिर उसमें वादियां बनाई थी ना। कम फिर उसके बाद एक तो इसके मानी यही है, सुराख करना, शगाफ करना, छील छाल कर दुरुस्त करना, इसी से किसी सवाल का जवाब देने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, किसी सवाल का जवाब देना, और कोई चीज मांगी जाए तो उसे कबूल कर लेना या उसे देना भी। जॉब जवाब, और ये लफ्ज जो है ना हम जो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं जवाब, तो ये अरबी जबान का असल में लफ्ज है। जीम वो बा, ये जो ऐसी बाजों का जमीन होती है जो निचली होती है, पस्त जमीन, उसमें जो गड़ा सा होता है ना उसके लिए भी आता है, के पस्त जमीन की तरह, फिर हर तरह जमीन के कता करने पे बोला जाने लगा। वह समूद अल्लज़ीन जाबू सखरा बिलवाद, और समूद जो थे उन्होंने वादी में पत्थर तराशे थे, घर बनाए थे। किसी कलाम के जवाब को जवाब क्यों कहा जाता है, एक तरफ काटना है ना, पस्त जमीन निचली जमीन में गड़ा सा बन जाता है ना, जैसे एक जमीन हमवार है फिर बीच में आप देखें तो थोड़ी सी जमीन नीचे को है, पस्त है, ऐसे लगता है वो गड़ा है, तो उसको अगर जम कर लिया जाए तो उसके लिए जॉब कहा जाता है। फिर हर तरह की जमीन जो है ना उसको कता करना या उसको जो है वो छील छाल कर दुरुस्त कर लेना, उसके लिए इसको बोला जाने लगा। किसी कलाम के जवाब को भी जवाब इसलिए कहते हैं कि वो कायल के मुंह से निकलकर, कायल कौन होता है, बोलने वाला कि उसके मुंह से निकलकर फिजा को काटता हुआ सामे के कान तक पहुंचता है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर कोई बात की इब्तदा करता है ना तो उसको नहीं जवाब कहते, वो तो इब्तदा है, लेकिन जो कलाम के लौटाने पर जवाब दिया जाता है, कोई बात कर रहा है उसका जो जवाब दिया जाता है उस पर जो है ये जवाब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और आपने मुनासबत याद रखनी है। क्योंकि इस तरह ना याद करना आसान हो जाता है कि जमीन है, जमीन में गड़ा है, पस्त जमीन है, तो पस्त जमीन जो है उसमें जो गड़ा सा होता है उसको जौब कहते हैं। फिर हर तरह की जमीन के कता करने पर बोला जाने लगा, और मानी क्या है, जीम वो बा के कता करना, सुराख करना, शगाफ करना, उसे छील छाल कर दुरुस्त करना। और तो जमीन को खोदने के लिए, तराशने के लिए भी इसको बोला जाता है। वैसे तो उसको बोलते हैं ना कि जमीन में गड़ा है, उसको बोला, लेकिन अब गड़ा नहीं है, है हमवार, फिर उसको खोद खाद के नीचा कर लिया, उसको भी कहा जाने लगा। इसी तरह जब बात करते हैं, कोई किसी ने एक बात की, दूसरे ने उसका जवाब दिया, तो एक तरफ बात करने वाला है, एक तरफ बात सुनने वाला है, तो सवाल करने वाले के जवाब में जो बात कही जाती है तो वो फिजा को चीरती हुई, उसमें सुराख करती हुई जो सुनने वाला होता है ना उसके कान तक जाके पहुंचती है, तो उसको भी जवाब कहा जाता है। तो ये जो बीच का जगह है ना, जैसे वो समझ ले सुराख है, छेद है, गड़ा है, उसमें से गुजरती है, उसके कान तक पहुंचती है। बात समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो फिर इतना याद रखें कि जवाब देना, किसी की कोई पुकार है उस पर लबैक कहा, जवाब दिया। असाबहुम सौप से है तीर का निशाने पर लगना, और मुसीबत जो है उसको भी कहते हैं, और अलकर कर का लफ्ज जो है ये जख्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जख्म के लिए कुरान में दो लफ्ज आए हैं, एक अलकरहुन है और एक जरहुन जुरूह। और अलकरहुन जो है ये पहला दर्जा है, फोड़ा, फिंसी, खारिश, जख्म, ऐसा जख्म जिसका असर जिल्द तक महदूद हो, खा छिल जाए, खराश आ जाए, या जो फोड़ा फिंसी है। और दूसरा जो गहरा जख्म होता है उसको जुरूह या जरहुन कहते हैं। निर्मतिन आयत 174 में है, और निर्मत का लफ्ज इस्म जिन्स है, एक के लिए भी आता है और ज्यादा के लिए भी, वाहिद और जमा भी। यमसासुम मीम सीन सीन छूना, रिद्वान रादवाद वो रादवाद या राजी होना, खुश होना। अजीम आयन जोए मीम, और अजमुन किसे कहते हैं, हड्डी को कहते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं इनका जरा पता करूं। आयन जोए मीम अजमुन हड्डी, और अजीम भी बड़ी बात के लिए फिर इस्तेमाल किया जाने लगा।